प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 10 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 19 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान प्रिय साथियों के नाम हैं हेमंत बंकर विदिशा मध्य प्रदेश से, रजनीश सिंह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अजीत सिंह थिलोर हरियाणा से, आनंद भास्कर जहानाबाद बिहार से, मोहम्मद सहनसा मधुबनी बिहार से, पूनम सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, सोहन शर्मा आपका गांव है सलमान जिला करनाल हरियाणा से, शाल्या सिंह यादव ईशापुर मलिहाबाद उत्तर प्रदेश से, अमित कुमार आपका गांव है रामनियर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से, बिंदेश पांडे बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, विमल वर्मा आपका गांव है बक्सर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश से, कंचन कुमारी आपका गांव है अजहर जिला बेगूसराय बिहार से, राहुल राय भारती आपका गांव है मिर्जवान जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से, शशि कुमार आपका गांव है तिलक टोला जिला बेगूसराय बिहार से, कुलदीप आपका गांव है इंदुमाई जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, सागर जाधव भोपाल मध्य प्रदेश से, कृष्ण कुमार आपका गांव है चौबे पारसा जिला गोपालगंज बिहार से, मनोज कुमार दास बसदिया बिहार से, और सत्य पी उपाध्याय आपका गांव है टेकापुर जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो हेमंत रजनीश अजीत आनंद मोहम्मद सहनसा पूनम सोहन शाल्या अमित बिंदेश विमल कंचन राहुल शशि कुलदीप सागर कृष्णा मनोज और सत्य पी उपाध्याय आप सभी 19 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग विनिर्माण का वैश्विक हब भारत इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा एनालिटिकल तरीके से बात करेंगे लेकिन इससे पहले आइए थोड़ी सी न्यूज देख लेते हैं। और सच पूछिए तो न्यूज कुछ खास है नहीं फ्रेंड्स, लेकिन न्यूज़पेपर्स की कुछ क्लिपिंग्स को लेकर एडिटोरियल कमेंट्स और एडिटोरियल आर्टिकल्स को लेकर के मैं जरूर कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा। नोएडा में अभी सैमसंग जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है वो मोबाइल बनाने वाले जो फैक्ट्री लगाई गई है उसके उद्घाटन की खबर आपने सुनी है और इसी के आधार पर मैंने आज के अपने मुख्य विषय का चयन भी किया है। तो उसी के तहत मित्रों इस खबर के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक क्लिपिंग प्रोवाइड कर रहा हूं खासकर पंजाब में जो नशाखोरी की हालत है उसके ऊपर। नशाखोरी फ्रेंड्स आप जानते हैं कि करीब मेरे सबसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा, 1.5-2 साल पहले की बात है, एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब और वो बड़ी विवादास्पद भी हुई थी, है उसको सेंसर बोर्ड से थोड़ी सी परेशानी भी उठानी पड़ी थी। बेसिकली जो उड़ता पंजाब है उसमें पंजाब में जो नशे की हालत होती जा रही है उसी को डिपेक्ट किया गया था। और सच पूछे तो पंजाब में जो नशाखोरी की जो स्थिति है वो बहुत ही बदतर होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है। मतलब ये माना जा रहा है कि पंजाब की लगभग 50% आबादी खासकर नौजवान इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और धीरे धीरे यहां तक कि नौजवान ही नहीं बल्कि महिलाएं और बड़े लोग भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। दोस्तों ये तो एक पक्ष हुआ, नशाखोरी के कारण जो नुकसान हो रहा है जो अपराध बढ़ रहे हैं वो तो एक पक्ष है ही, आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिनको किसी भी वजह से ड्रग्स की लत पड़ गई है और उन्हें ड्रग्स नहीं मिल पा रहे हैं तो वो दवाइयों की दुकानों में जा करके ड्रग्स पता लगा कि कब सिरप पी रहे हैं या दूसरी चीजें ले रहे हैं, क्योंकि वो तो बेचैनी क्या होती है। अगर आपने संजू फिल्म देखी हो तो उसमें आपने संजय दत्त को देखा है। और यहां मैं जो फिल्मों की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स आपकी कभी मत समझिएगा कि ये कोई हल्की बात है, आपको चाहिए कि सिविल सर्विस के प्रश्न में, प्रश्न के उत्तर के रूप में अगर आपको कहीं जरूरत महसूस होती है तो आप बकायदे इनके रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि उड़ता पंजाब एक बहुत बड़ी समस्या को उठाता है। और अगर वो फिल्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि किताब नहीं है तो आपके काम का नहीं है। तो इतना आपको अपने दिमाग को ओपन रखना पड़ेगा। तो केवल समस्या युवा वर्ग की बर्बादी का ही नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो पंजाब प्रांत जो हमारा बॉर्डर पड़ता है उसकी सुरक्षा का भी है। मतलब इससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी जुड़ जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न इस रूप में कि जो आतंकवाद हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो वो सिर्फ आतंकवाद नहीं होता है, वो नई न्यू जनरेशन को स्पाइल करने की भी कोशिश करते हैं, चाहे वो नशे के जरिए करें, चाहे वो उनका एक तरह से ब्रेन वॉश करके और ट्रेनिंग के जरिए करें। जैसे भी हो, अगर किसी भी समाज के युवा वर्ग को आप भटका दीजिए तो खत्म हो गई, वो समाज नष्ट ही हो जाएगा, भले ही थोड़ा सा नष्ट होने में उसे टाइम क्यों न लगे, लेकिन आप उसे बचा नहीं सकते। और जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी है, वो बकायदे आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में है। तो जो नशे की जो समस्या है, उसे आपको पंजाब की समस्या के साथ साथ एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में भी देखना होगा, तब आप इस विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। फिर आप देखिए कि उड़ता पंजाब में आपने गौर किया होगा, अगर आपको याद हो तो उसमें जो नेक्सस दिखाया गया है, जो गठबंधन दिखाया गया है, वो गठबंधन सबसे ज्यादा खतरनाक है। चलिए बाहरी जो शक्तियां हैं वो ये सब कर रही हैं, तस्करी में लगी हुई है, वो बात तो है ही, लेकिन वहां आपको बकायदे पुलिस, प्रशासन और राजनीति, इन तीनों का गठबंधन दिखाई देता है उड़ता पंजाब फिल्म में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग भी या हमारी जो व्यवस्था है वह इतनी पुख्ता नहीं है कि हम इन पर नियंत्रण कर सकें। और इसी को लेकर के देखिए कि अभी पंजाब सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जो आपकी जानकारी में होने ही चाहिए। जैसे अभी उन्होंने कहा कि जितने भी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनका डोप टेस्ट कराया जाएगा। तो डोप टेस्ट कराने से पता लग जाएगा कि कर्मचारियों में कितने लोग हैं जो नशे के आदि हो गए हैं। इसको लेकर के थोड़ी सी बहस भी हुई है, बवाल भी मचा है, लेकिन ये उन्होंने कहा, ये घोषणा की है। और साथ ही साथ बकायदे पंजाब सरकार ने ये आदेश निकाला है कि कोई भी डॉक्टर की पर्ची के बिना जो मेडिकल शॉप है वो इंजेक्शन नहीं देगा। इंजेक्शन की मतलब सिरिंज कह लीजिए, सिरिंज, क्योंकि ड्रग्स लेने वाले इंजेक्ट सिरिंज के जरिए भी ड्रग्स लेते हैं। मतलब ये कदम उठा रहे हैं और उसने रिकमेंड भी किया है कि जो इसकी तस्करी में पकड़े जाएं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो चूंकि वो तो उनके अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसे तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, तो उसने केंद्र सरकार से इस तरह की रिकमेंडेशन पंजाब सरकार ने भेजी है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट खबरें हैं कुछ नशाखोरी को लेकर के, पंजाब की स्पेशली पंजाब की नशाखोरी को लेकर के। तो इस पर मुझे लगता है कि आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे हमारे युवा वर्ग से है। और जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो इसी रूप में ही करते हैं कि हमारे यहां जो कार्यशील जो जनसंख्या है, जिसे आप युवा कहेंगे, वो बहुत ज्यादा है और हमें इसका लाभ उठा लेना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण खबर थी मित्रों, जिसकी चर्चा मैं करना चाह रहा था। अब मैं अपने सीधे मुख्य विषय पर आता हूं। आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोएडा में सैमसंग मोबाइल का उद्घाटन किया है और उससे लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत में होगा। और ये सैमसंग कंपनी का जो मोबाइल बनाने वाली जो फैक्ट्री है, उस दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी, ये नोएडा में लगेगी। और इसके बनाए हुए जो मोबाइल फोन है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, भेजे जाएंगे। ये एक छोटी सी खबर है, राइट। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी समय भाषण देते हुए फिर भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के बारे में तो उन्होंने कहा ही, साथ ही साथ ये कहा कि भारत जो है अब मैन्युफैक्चरिंग का एक वैश्विक हब बनता जा रहा है। वैश्विक हब यानी कि सेंटर बनता जा रहा है, दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में आकर के अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाह रही हैं और इसमें हमें काफी सफलता मिल रही है। मित्रों ये एक पक्ष है जिसकी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो इन चीजों को बहुत ही आशंकित निगाह से देख रहा है। देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके से अपने तैयारी को रूप देना ही होगा। यह नहीं कि जो चीजें हो रही हैं चाहे वो सरकार की ही क्यों ना हो, सब कुछ सही ही हो रही है। और यह भी नहीं है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चूंकि वो सरकार की चीज है तो वो गलत हो रही है। यानी कि ना तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और ना प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, आप बेसिकली एक रैशनल पर्सन हैं, रैशनल युवा हैं। यानी कि एक तार्किक व्यक्ति हैं। आप जो भी स्टैंड लेते हैं, जो भी आप निष्कर्ष निकालते हैं, वो तर्क युक्त होता है और अपने आप अपने पक्ष में बकायदे तथ्य प्रोवाइड करते हैं। जैसे अमर्त सेन जी ने भी अभी खासकर वो 2014 के बाद की जो आर्थिक नीतियां रही हैं उनका विरोध किया है, और भी बीच बीच में आप सुनते हैं कि इस तरह के विरोधी स्वर उठते हैं, और उसमें यह होता है कि भारत फिर से एक धीरे धीरे अब आर्थिक उपनिवेश बनने की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया में हम यही कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए भारत में बनाए तो इससे भारत में निवेश बढ़ेगा, और जो देखिए जब भारत में कोई फैक्ट्री लगाएगा तो बट नहीं चढ़े कि भारत के रॉ मटेरियल का यूज करेगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उस पर सरकार को टैक्स मिलेगा, फिर अगर वो चीज बाहर भेजी जाती है एक्सपोर्ट की जाती है तो उस पर भारत को टैक्स मिलेगा, तो लगता है कि जैसे भारत की अर्थव्यवस्था इससे बहुत मजबूत होगी, और कुछ सीमा तक ये सही भी है। लेकिन जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो फिर किस चीज की आलोचना कर रहे हैं, वो आलोचना क्यों कर रहे हैं? मित्रों तो उसका एक दूसरा पक्ष भी है देखिए, और वो ये है कि अब ये जो कंपनी आई है, अगर हम सैमसंग कंपनी का उदाहरण दें तो अब देखिए कि ये प्रॉफिट कमाएगी। सैमसंग कंपनी जो यहां उद्योग लगा रही है तो ये कोई एनजीओ खोल करके नहीं बैठी है, ये प्रॉफिट कमाएगी। नो डाउट कि हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सरकार को टैक्स भी मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो किसको होगा? वो सैमसंग को होगा, और ये सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, तो वो जो इतना बड़ा चंक है जो प्रॉफिट का जो मेक इन इंडिया से वो जनरेट करेंगे वो पूरा का पूरा दक्षिण कोरिया में चला जाएगा, जो अदरवाइज भारत में रह सकता था। तो भारत में वो कैसे रह सकता है? देखिए यहां चीन का बिल्कुल एक विपरीत इसके समानांतर उदाहरण है। चीन करता यह है कि जो भी चीज उसे इस तरह की दिखाई देती है उसमें वो खुद आगे आता है, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। भारत के साथ ये हुआ है कि खासकर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं। देखिए मोटर मैकेनिकल क्षेत्र में तो हम काफी अच्छा कर गए हैं, भारतीय जो कारें हैं वो सरवाइव कर रही हैं, बजाज है वो अपने स्कूटर के दम पर टिका हुआ, हालांकि बाहर की कंपनियां आकर के धीरे धीरे अब हम पर अधिकार जमाने की कोशिश करें। मारुति को आप ले सकते हैं, लेकिन मारुति केवल हमारी नहीं है, अब तो उस पर जापान का ज्यादा ही हिस्सा हो गया है, तो भी जापान से टेक्नोलॉजी ली है। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि हम अभी तक वो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं जो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में जरूरत है, और ये भविष्य की वस्तु है। मैन्युफैक्चरिंग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉनिक में हो रहा है। जैसे अगर आप कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, तो आप बताइए कि जो आप यूज करते हैं वो कहां के बने हुए हैं? शुरू में विप्रो वगैरह कंपनी बना रही थी, लेकिन अब हमारी कंपनियां इस मामले में काफी पिछड़ गई हैं। लगभग यही हाल मोबाइल का है। मोबाइल नो डाउट माइक्रोमैक्स और दूसरी भारतीय कंपनियां मोबाइल बना रही हैं, लेकिन आप देखिए कि स्मार्टफोन और ये जो हो रहे हैं ये सब के सब बाहरी कंपनियां बना करके भारत में मार्केट कर रही हैं, भारत में बेच रही हैं, तो यहां हम पिछड़ रहे हैं। तो कल्पना करके देखिए कि सैमसंग की जगह अगर भारत किसी भारतीय कंपनी का ही उद्घाटन किया गया होता तो उससे हमें कितना लाभ होता, क्योंकि प्रॉफिट भारत में ही रहता। तो इसीलिए एक अर्थशास्त्रियों का एक पक्ष यह भी है जो इन बातों की आलोचना करता है और आशंकित नजरों से इन्हें देखता भी है। तो मित्रों इस तरीके से तथ्यों के आधार पर आपको अपनी बात कहनी चाहिए, यह सिविल सर्विस की अपनी निहायत ही जरूरी आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। मित्रों ईमेल में मुझे लगातार काफी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर शुरुआत कैसे करें, एनसीईआरटी की किताबें कैसे पढ़ें। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इन सभी विषयों पर मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम अवेलेबल है। AFEIS में आप चले जाइए, आपको ये प्रोग्राम सुनने को मिल जाएंगे। खासकर शुरुआत कैसे करें तो वहां है ही, और भी दूसरे टॉपिक्स पर। तो प्लीज आप सब थोड़ा सा यूट्यूब चैनल पर जो जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिन पर मैं डिटेल में बात कर चुका हूं, आप उन सबको सुने, ध्यान से सुने, और इसके बाद यदि कोई और आपके प्रश्न शेष रह जाते हैं तो फिर आप मुझे लिखें। और लेकिन प्लीज लिखने से पहले आप ये मुझे जरूर सूचित कर दें कि मैंने YouTube पर यह प्रोग्राम आपका देख लिया है, सुन लिया है, ताकि मैं आपको उससे आगे की बात बता सकूं। तो मित्रों ये आप कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। यहां मैं आपको एक दो तीन लाइन बता भी दूंगा तो उससे बात उतनी बनेगी नहीं जितनी कि आप YouTube चैनल पर उस प्रोग्राम को सुनकर फायदा उठा सकेंगे। तो दोस्तों पांच मित्रों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा ईमेल लिखने के लिए, और वे हैं विनय कुमार, वैभव श्रीवास्तव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, राहुल लखोत्रा जम्मू से, विश्वजीत सिंह शेखावत सीकर राजस्थान से, और प्रकृति कुल श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।